पृथिव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ जिनागम प्रवेश पेज नंबर 77 प्रतिमाओं का निरूपण चल रहा है। दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा इन दोनों का निरूपण पूर्ण रूप से हो चुका है। अगली प्रतिमाओं का स्वरूप हम समझेंगे। तीसरी प्रतिमा का नाम सामयिक प्रतिमा। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ के अनुसार इस प्रतिमा का नाम सामयिक प्रतिमा और तत्वार सूत्र ग्रंथ के अनुसार इस प्रतिमा का नाम घंटी बज जाती है। तत्वार सूत्र ग्रंथ के अनुसार इस प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है। अपेक्षाओं के आधार से इन दोनों शब्दों का अपनी अपनी जगह समीचीन अर्थ है। उसको उसी जगह उसी रूप में समझना चाहिए। सामायिक प्रतिमा का स्वरूप यहाँ लिखा है। तीनों कौन सा घुमा रहे हैं क्या मालूम। तीनों संध्याओं में टेस्ट करके रखो। लो वहीं से टेस्ट करो। पहले डिस्टर्ब होता है बार बार, आते ही कर लेना चाहिए थोड़ा। जना सामयिक प्रतिमा है शत्रु मित्र लाभ हानि जीवन मरण में समता रखने को सामयिक कहते हैं। सामयिक में संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता का चिंतन करे। 12 भावनाओं एवं 16 कारण भावनाओं का चिंतन करे। पंच नमस्कार मंत्र आदि का जाप करे। ये सामायिक प्रतिमा का स्वरूप बताया गया। तीनों संध्याओं में क्या करना, नियम पूर्वक सामायिक करना, यानी तीन बार परिग्रह को ये मेरे नहीं हैं, मैं इनमें समता भाव धारण करता हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये जड़ वस्तु चेतन वस्तु पर हैं, पर से मैं ममत्व को त्याग करता हूँ और जितने समय के लिए मैं त्याग कर रहा हूँ उतने समय के लिए समता भाव धारण करता हूँ। इस प्रकार समय की पाबंदी से वह समता भाव को धारण कर लेता है, किंतु फिर भी ओरिजिनल समता नहीं रहती, समता का ही अभ्यास चल रहा है, क्योंकि एक घंटे तक त्याग करने से रागादि भावों का अभाव थोड़ी हो सकता है। यदि हो जाए तो फिर कहना क्या, एकाध घंटे के लिए मुनि बन करके जंगल में जाकर मुनि बन करके तपस्या में लीन हो जाए, एक घंटे के लिए मुनि दीक्षा लेना और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, हो सकता है क्या? तो श्रावक तो वस्त्र सहित होकर के भी सामायिक करे या निर्वस्त्र होकर के भी सामायिक करे, ये समता का अभ्यास ही कहलाएगा, साक्षात समता नहीं है। समता का जो दूसरा नाम है शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, समता, ये सभी एकार्थक एकार्थक शब्द हैं। इस समता को श्रावक एक अंश मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाता, अभ्यास जरूर हो जाता है, एक अंश मात्र भी उसको अनुभूति में नहीं आती। क्यों नहीं आती? वह नियम से चल रहा है, यम को धारण नहीं कर रहा है, सारे परिग्रहों के प्रति ममत्व तो तोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही घंटे के लिए, जब तक सामायिक करूंगा तब तक के लिए त्याग है, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो मुझे ग्रहण करना ही पड़ता है, तो कहां राग आदि भावों का अभाव हुआ? राग आदि भावों का अभाव करने के लिए यम व्रत चाहिए, यम रूप चाहिए व्रत। व्रतों का ग्रहण दो रूप दो प्रकार से होता है, यम व नियम। नियम पूर्वक यानी समय की पाबंदी पूर्वक, हाँ समय की पाबंदी पूर्वक करना, समय के सीमा को बांध करके करना। समय की सीमा जहाँ बंध गई वहां पर महाव्रत प्रकट नहीं होते। इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में जीते जी मैं परिग्रहों के प्रति ममत्व भाव नहीं करूंगा, आजीवन पर्यंत नहीं करूंगा, ये जो अखंड संकल्प है ये रागादि भावों को अभाव करा देता है। इतना ही नहीं, मैं इस जन्म में भी इन परिग्रहों को नहीं चाहता और परभव में भी इन परिग्रहों के प्रति ममत्व भाव धारण नहीं करता, ये मुझे आवश्यक नहीं है, मैं अकेला आत्मा हूँ, इनके बिना भी रह सकता हूँ, इनके बिना ही रहूँगा, पर भव में भी इनकी वांछा नहीं और इस भव में भी वांछा नहीं, इस प्रकार का संकल्प होने पर समता भाव की सिद्धि होती है और यही समता भाव सामायिक कहलाता है। एक घंटे तक खड़े रहे ये सामायिक नहीं, या एक घंटे तक बैठे रहे ये भी सामायिक नहीं, या एक घंटे तक बिल्कुल प्रवृत्ति को छोड़ करके हिले डुले बिना तटस्थ रहे ये भी सामायिक नहीं। सामायिक उसका नाम जो बाह्य परिग्रहों के प्रति अनादिकाल से ये आत्मा रागादि भाव में अटक रहा है, इस अटकाव को दूर करना, सांकल को खोल देना, बंधा हुआ है परिग्रह से, हाथी के पांव में यदि सांकल बंधा हुआ है तो शक्तिशाली हाथी भी एक छोटा सा इतना मोटा और लंबा सांकल के कारण से वह परतंत्र हो जाता है। आत्मा परतंत्र है अनादिकाल से, किस कारण से? केवल विषमता के कारण से, समता नहीं आ पाई। और यह विषमता किससे आई? कषाय परिणामों से आई, क्रोध मान माया और लोभ। ये लोभ कषाय आदि छूटे नहीं, ये लोभ छूटता क्यों नहीं? क्योंकि यह आत्मा पर द्रव्यों को ग्रहण करने में रस लेता है, इसको पर द्रव्य बहुत चाहिए और पर द्रव्यों के निमित्त से यदि भौतिक वांछा रखता है तो वह मुझे दूसरा कोई अच्छा कहे, इसलिए बड़ा बड़ा तप करना, बड़ी बड़ी तपस्या करना, हाँ, ख्याति लाभ पूजा के प्रति आसक्ति जो होती है ना, वह समता भाव को उत्पन्न होने नहीं देता। तप जो हो रहा होना चाहिए वह कर्म निर्जरा के लिए होना चाहिए ना, कर्म निर्जरा के उद्देश्य करना, यह परमार्थ दृष्टि हो गई। इसमें कोई प्रसिद्धि की कामना नहीं रहती। समता भाव सिद्ध हुए बिना तो तप भी व्यर्थ है। कोई ख्याति लाभ पूजा की इच्छा नहीं, मैं कोई भी तप करूंगा कर्म निर्जरा के लिए करूंगा, दूसरा कोई मुझे सम्मान सम्मानित करे, सम्मान दे दे, या मेरी इतना करता हूं ऐसा प्रसिद्धि हो जाए, इसकी भावना रंज मात्र में भी अंदर नहीं रहती। इसी का नाम समता है। और ये परमार्थ दृष्टि साधक के पास यदि नहीं रहती है तो सारा किया कराया गया जरा भी कर्म निर्जरा का कारण न होकर केवल ख्याति मिलने का कारण तो बन सकता है। ख्याति मिल जाती, भरपूर मिल जाती है, लेकिन उससे क्या पेट भरेगा? भर गया पेट। ख्याति को लेकर के क्या करोगे? लोगों को संतुष्ट करना है क्या? लोग तो सर्कस ही देखना चाहते हैं हमेशा। आप अच्छी तरह से सर्कस करो, मैं देख लूंगा, वाय वाय कहूंगा। अब तुमको जरा रस आ गया तो उनको दिखाने में लग जाओगे। तो ये परमार्थ दृष्टि नहीं है। परमार्थ दृष्टि को रख कर यदि सर्कस भी नहीं करते हो तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। सर्कस की जरूरत ही नहीं यहां। कैसा सर्कस? ख्याति लाभ पूजा आदि के भावना से उसको धारण करते हुए कोई भी काम करते रहना, सर्कस है ये। क्या करना? ऐसा तो अनंत बार किया है, अनंत काल से किया है। आत्मा का कार्य हमने एक बार भी नहीं किया। आत्मा का कार्य आत्मा में होता है। आत्मा में जो विकारी भाव हैं उनको दूर करना है। क्रोध मान माया लोभ इनको जीतने में साधक सतत प्रयत्नशील रहता है। बाहर की कामना न जगे, बाहर लोग मुझे वाय वाय कहने के काम मैं करता रहूंगा, ख्याति? तो इस प्रकार की तपस्या को इस आत्मा ने कितनी बार किया? अनंत बार। और ख्याति के भाव रहते हैं तो फिर गुणस्थान कौन सा रहेगा? पहला परमार्थ दृष्टिहीन जीव को पहला गुणस्थान होता है। तप यह कर्म निर्जरा का साधन है, यह नाम कमाने का साधन है। देखो, इसके लिए था और उसके लिए उपयोग किया। वस्त्र आदि अपन शरीर पर पहनते हैं, ठीक है, शरीर पर ही पहनने के साधन हैं। इन वस्त्र आदि को शरीर पर पहनने के ये जो साधन हैं, बहुमूल्यवान हैं, बहुत पैसा देकर के लाते हैं। अगर इन वस्त्रों को ईंधन समझकर चाय बनाने में इनका उपयोग किया जाए, चाय बनाओ, खाना पकाओ, वस्त्र को जलाओ, चाय बन सकती है ना कि वस्त्र में? वस्त्र को जलाने से चाय बन सकती है कि नहीं? तो ऐसा कोई पागल होता है क्या जो अपने वस्त्र को जलाकर चाय पीता है? दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं करता। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में, परमार्थ क्षेत्र में यह नियम है कि तप आदि करते हैं, बहिरंग तप आदि करते हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो धर्म के वस्त्र हैं, ख्याति लाभ पूजा आदि के ईंधन नहीं। ख्याति लाभ पूजा आदि के ईंधन नहीं है वो, और ईंधन के रूप में तप आदि को अपन ने धारण कर लिया तो जीवन बेकार चला गया, सर्कस करती चली गई। तो निर्दोष विशुद्ध तप करना आवश्यक बताया। निर्दोष विशुद्ध तप कौन सा? बड़ी बड़ी तपस्या कर लो कोई बात नहीं, लेकिन सब परमार्थ की दृष्टि से करो, उसके पीछे कोई मान सम्मान की आशा नहीं। मैंने इतने कर लिया, मुझे कोई अच्छा कहता ही नहीं, मुझे कोई मेरे तरफ देखता ही नहीं, इस प्रकार के भाव क्यों? उनके लिए कर रहे हो क्या? मेरी कोई प्रशंसा तक नहीं करता, इतना सब करता हूं, सर्कस वाई वाई तक नहीं कहता, टाली तक नहीं बजाता। ऐसे परिणाम आ गए तो जो कुछ भी किया है वो सब मिट्टी में मिल गया, रंच मात्र भी कर्म निर्जरा उससे नहीं होती। समता भाव को सिद्ध करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि इस जीव के संस्कार अनादिकाल से कषाय के संस्कार हैं, कषाय छोड़ने के लिए कभी धर्म करता नहीं है। तो सामायिक प्रतिमा का स्वरूप समझाते हुए श्रावक को सावधान देते हैं। दूसरी प्रतिमा ही कह दिया उन्होंने कि तीन शल्यों से रहित होकर के प्रतिमा धारण करो, कोई ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव रखोगे तो शल्य रहेगा। ये शल्य व्रतों को सफल नहीं बना सकती। शल्य भौतिक मार्ग है, परमार्थ मार्ग नहीं। निशल्य व्रत कहलाते हैं। जिनको व्रत कहा है उनका नाम शल्य रहित है। नियम से शल्य रहित ही होते हैं। इस संसार में जिधर देखो उधर ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए ही धार्मिक अनुष्ठान कार्य क्रियाकलाप होते रहते हैं, प्रसिद्धि की कामना। हमारा गांव इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, प्रशंसा करें, प्रशंसा सुनने के परिणाम होते हैं कि नहीं? यहां परमार्थ डूब जाता है, धर्म ही चला जाता है। जो अनंत आनंद का धाम है वह खिसक जाता है और दुख आ जाता है। और आनंद आता भी है तो ये बाहरी बाहरी, फिर वाय वाय कहने से थोड़ा सा तो आनंद आ गया आपको, लेकिन वो क्षणिक है, वो कोई मोक्ष नहीं देगा, वो कोई शाश्वत सुख नहीं देगा, वो आपको शाश्वत सुख का मार्ग नहीं खोल देगा, वो संसार में अटकाए रखेगा। हमने तप किया तो दूसरे से प्रशंसा की जरूरत क्या है? हमने मार्ग दिखाया, परमार्थ का मार्ग दिखाया, तो परमार्थ मार्ग पर चलने वाले चल रहे हैं तो उसके प्रति वाई वाई की क्या जरूरत है? कामना भावना को नाश करती है और भावना कामना को नाश करती है, इसलिए जैन शास्त्रों में तो ये कहा है भावना जीव को तीर्थंकर बना देती और कामना जीव को तीतर बना देती। कामना जीव को तीतर बनाए, तीतर मजे का है? पक्षी नहीं, तीतर पक्षी है ना, एक प्रकार का पक्षी, हाँ वो अलग है, तितली वो अलग है, वो तितली है, ये तीतर है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है और कामना पाषाण को अगवान बना देती, अगवान पापवान पापात्मा। कामना अगर जगी तो पत्थर को तोड़ तोड़ करके अलग कर देगा, विनाश कर देगा, और भावना अगर जगी उसी पाषाण को भगवान बनाने, भगवान का रूप दिला देगा। अपने जीवन में सदा भावना जागृत रहे, कामना नहीं, कामना से विनाश ही विनाश है आत्मा का। अब भावना से आत्मा का उत्थान ही उत्थान है, विकास ही विकास है, हमें विकास की ओर बढ़ना है कि विनाश की ओर? विकास की ओर, अपने आत्मा को विकास की ओर ले जाना है। तो यथार्थ जो प्रतिमाएं हैं, परमार्थ की प्रतिमाओं को हमें धारण करना और प्रतिमावत बनना, भगवान की प्रतिमावत, प्रतिमा धारण कर परमार्थ दृष्टि से भगवान बनाने का प्रयत्न करना। हमारे धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते हैं इसमें किसी भी प्रकार से एक अंश मात्र में भी ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव जगना नहीं चाहिए। यदि जग रहे हैं तो दबाओ उसको, पकड़ो उसको, निकाल लो, आत्मा से बाहर निकाल दो उसको। कितनी बार करना है ऐसा? पिछले बार भी ऐसा ही किया है, एक मनुष्य भव चला गया, उसी की वजह से खराब हो गया। उसके पीछे भी देखे तो वहां पर भी एक खराब करके आए, और ये भी जो मिला है संस्कारवश, उसी पूर्व संस्कारवश यह भी खराब होने लग जाए तो कितना खराब लगना चाहिए, बहुत खराब लगना चाहिए, ऐसा होने नहीं देंगे हम, ये संकल्प चाहिए। जब भी कुछ धार्मिक कार्य करेंगे उसके पीछे कोई भी आशा नहीं, आशा को ही निराश करने के लिए, आशा जो उत्पन्न होती है ना, इसी को निराशा में डालने के लिए धर्म किया जाता है। आशा को निराशा मिले और भावना को सफलता मिले, और भावना यदि है तो सफलता मिलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मिले कहने की जरूरत भी नहीं, सारे काम सफल होते हैं। एक तुलनात्मक विचार किया जाए, एक जीव धार्मिक अनुष्ठान दान पूजा इत्यादि करके, अनेक तपस्या इत्यादि करके, व्रतों का पालन करके जो ख्याति की अपेक्षा रखता है या लाभ की अपेक्षा रखता है, परभव में लाभ भी मिलता है और ख्याति भी यहाँ मिलती है, नहीं मिलती है ऐसी बात नहीं, क्योंकि सर्कस किया है तो कुछ न कुछ पैसा मिलता ही है। जरा तुलनात्मक देखे, ये तो मिल तो गया, यहां जो ख्याति मिली वो क्षणिक था, नाम मिला, प्रसिद्धि मिली, ये क्षणिक था, इससे तो पेट नहीं भरा। वहां पर भी चले गए तो यहां के सर्कस से जो पुण्य बंद हो गया था, वह पुण्य हमारे लिए स्वर्ग में ले जा करके अहमेंद्र पद भी दिला दिया और नवे ग्रेक में चले गए। नवे ग्रेविक में हमारा जन्म हुआ, वहां पर भी क्या मिला, अहमेंद्र पद मिला, तो अहम की पुष्टि के लिए तो मिला। और जो इंद्रिय सुख मिले वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए तो मिले, आत्मा को तृप्त करने के लिए कौन सी चीज वहां पर मिल गई, कुछ भी नहीं मिला। आत्मा ऐसी सूखी है, रेगिस्तान जैसी, उसमें कोई हरी भरी नदी नहीं बह रही है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को उस रेगिस्तान में भी बड़ा मैदान सुहाना लगता है। दूर दूर तक रेत के पहाड़ हैं, उसमें ही खुश रहता है। रेगिस्तान के पहाड़ों को भी देख करके खुशी होती है अज्ञानी जीव को, लेकिन ज्ञानी जीव को उसको देख करके आंसू आते हैं, हमने क्या किया ही अज्ञान अवस्था में। अज्ञानी अज्ञान पूर्वक तप करता है, ज्ञानी ज्ञान पूर्वक तप करता है। ज्ञानी के छन्माय त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। ज्ञानी जो तप करता है क्षण भर में असंख्यात करोड़ों तक जो तप करके कर्म निर्जरा करता है अज्ञानी, वो क्षण भर में ज्ञानी करता है। तो ये किसकी ताकत, ये परमार्थ दृष्टि की ताकत। और वो किसकी ताकत, वो लौकिक दृष्टि की ताकत। लौकिक दृष्टि से करोड़ों भवों तक मेहनत करना पड़ता है उतनी कर्मों की निर्जरा के लिए, और वो भी सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा तो होती नहीं, जो समय पर आए चले गए, समय पर आए चले गए, ऐसे समय पर आए चले गए इन कर्मों को इकट्ठा करोगे तो ज्ञानी के जो क्षण भर में कर्म निर्जरित हुए हैं उसके साथ सात इनकी तुलना हुई है। करोड़ों भवों में किए गए सविपाक निर्जरा के कर्मों को इकट्ठा करो एक तरफ रखो, और एक क्षण भर में ज्ञानी की जो निर्जरा है उनको इकट्ठा करो एक तरफ रखो, तो बराबर तराजू में समान 50-50। तो परमार्थ दृष्टि की कीमत यहां आंकी जाती है। हमारी दृष्टि परमार्थ की ही रहे, वो ओझल न हो, ये सावधानी के साथ प्रतिमाओं को यदि धारण करते हैं तो वो सफल होते हैं, वो यथार्थ प्रतिमाएं। इन्हीं प्रतिमाओं का वर्णन रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथों में है जो परमार्थ के कारणीभूत हैं, कर्म निर्जरा के कारणीभूत हैं, आत्म कल्याण के कारणीभूत। जहां आत्म कल्याण होता है वहां पर किसी भी प्रकार से ये विकारी भाव, ख्याति, लाभ, पूजा आदि के हो नहीं सकते, और जहां ख्याति, लाभ, पूजा आदि के विकारी परिणाम विद्यमान है वहां आत्म कल्याण होता नहीं है। समता। समता एक बहुत ऊंची चीज है, समता बहुत ऊंची चीज है। समता को छोड़कर विषमता में नहीं जाना ही समता है। समता को छोड़कर विषमता में नहीं जाना ही समता है। यह समता कब तक रहती है? जब तक परमार्थ दृष्टि है साधक के पास, तब तक समता रहती है। और जो ही परमार्थ दृष्टि से च्युत हो गया, त्यों ही समता गायब हो गई और विषमता आकर के धमक गई। अब इसमें वह कल्याण कर नहीं सकता। इससे केवल बहिरंग शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से मेहनत ही होता है, पसीना भी आता है, सर्कस हो जाता है, लेकिन कल्याण रंच मात्र भी नहीं हो पाता। और यह कल्याण का मार्ग है, कल्याण के लिए है। आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त करने का मार्ग यह है। सारी प्रतिमाएं उसी के लिए होती हैं। मुनि के 28 मूल गुण भी उसी के लिए हैं। सामायिक करो, इसका अर्थ परवशी मत हो, ऐसा अर्थ। सामायिक एक आवश्यक क्रिया है ना। आवश्यक किसको कहते हैं? उसका डेफिनेशन अष्टपाहुड़ में बताया है, पर के वशी नहीं होना ही आवश्यक है। सामायिक एक आवश्यक क्रिया की कोटि में आता है। पर के वशी नहीं होना ये सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र अलग है, सामायिक आवश्यक क्रिया अलग है। देखो, ध्यान से सुनना इसको, जरा मार्मिक बात है। सामायिक चारित्र अलग है, सामायिक आवश्यक क्रिया अलग है। श्रावक प्रतिमा के रूप में अभ्यास कर रहा है, इन दोनों का अभ्यास करने को सीखता है। क्या मतलब? सामायिक चारित्र का मतलब होता है समता भाव में हमेशा रहना। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तथि सामायिकम मतम। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में मैं क्षमा धारण करता हूँ। किसी भी जीव के साथ मेरा वैर भाव, द्वेष भाव, कलंकित भाव नहीं है। दूसरों को लेकर के मैं किसी का विकल्प नहीं रखता हूँ। यह विकल्प मेरी समता की विराधना करती है, करता है। विकल्प समता की विराधना करेगा क्या? नहीं। समता की विराधना पर के माध्यम से, पर के कारण से जो पर को निमित्त बनाकर विकल्प पैदा होते हैं, वो समता की विराधना के लिए कारणीभूत है। समता सर्वभूतेषु, सामायिक में हम जब बैठ जाते हैं, समता का अभ्यास करना ही है, तीसरी प्रतिमा का पालन करना ही है, तो कैसे रखें अपने आत्मा के परिणामों को? तो कहते हैं कि अनंत जीव राशि है इस संसार में, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, सारे जीव मेरे मित्र हैं, उनके प्रति मेरा कोई द्वेष भाव नहीं। उनका मेरे प्रति द्वेष भाव हो सकता है, क्योंकि वो अज्ञानी भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, उनका द्वेष हो भी और न भी हो, परंतु मेरे परिणाम तो किसी के प्रति द्वेष भाव रूप नहीं है। इतना विचार करना चाहिए सामायिक करने से पहले। ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। और इसमें जो चार पद आए हैं उनमें जो चार सूत्र हैं उस रूप हो जाना चाहिए। क्या कहा? समता सर्वभूतेषु, भूत यानी जीव, समता, उन सारे जीवों में समता भाव धारण करो। मेरे कोई भी, मैं किसी का द्वेषी नहीं हूं, पहला ये। मेरे प्रति कोई द्वेष करता है तो करें, कोई बात नहीं, वो मेरे लिए उपसर्ग का कारण भी बन सकता है। लेकिन मैं किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रति राग आदि भाव नहीं करूंगा, द्वेष आदि भाव नहीं करूंगा। जब तक मैं सामायिक कर रहा हूं तब तक तो नहीं करूंगा, सामायिक के बाद देख लूंगा। ऐसा विकल्प करना हो तो कर लो। कम से कम सामायिक कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं करूंगा, सामायिक करना हो जाओ। ऐसा तो करो। और ये भी नहीं कर पाए तो सामायिक नहीं कर सकेंगे। सामायिक में भी वह व्यक्ति आएगा, सताएगा। नहीं भी आएगा तो आपका मन उनको लेकर के आएगा, आपको समता में डूबने नहीं देगा। तो श्रावक सामायिक में क्या करता है आखिर? यही करता है कि विकल्पों को तोड़ने का प्रयत्न करता है, समता को लाने का प्रयत्न करता है। ऐसा द्वेष भाव क्यों होता है मुझे, इसकी अनुभूति तो हो, ऐसे प्रश्न तो उत्पन्न हो कि ऐसा क्यों होता है आखिर, ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं रोकने का प्रयत्न करता हूं कह करके वह रोकने का अभ्यास करने लगता है। मैं एक घंटे तक किसी का शत्रु नहीं, चलो आ भी गया तो उसके तरफ नहीं देखूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। शत्रु आकर के सामने भी बैठ गया तो उस उनके प्रति देख करके कोई भी हर्ष विषाद के परिणाम नहीं। क्यों? संकल्प हो चुका है, सारे जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। मैं सबके प्रति समता भाव धारण कर चुका हूं तो मित्र तो बन ही गए। मित्र के प्रति कभी द्वेष भाव होता है? अब मित्र बना लिया तो राग तो होगा। अब ये राग भाव क्या सामायिक में जाने देगा? समता में इसको भी माइनस कर देना चाहिए। माइनस राग माइनस द्वेष इज इक्वल टू समता। हाँ, समता, समता सर्वभूतेषु। देखो, द्वेष, सभी जीव मेरे मित्र हैं, इसको कहने के लिए क्यों कहा? ये शत्रुता को छोड़ने के लिए मित्र बनाओ, ये कहा। और मित्र बना करके वहीं चिपक के बैठ गए तो सामायिक क्या करोगे? तो सामायिक के अंदर तो मित्र को भी त्यागना है और शत्रु को भी त्यागना है। मित्र भी याद ना आ जाए, उस मतलब मित्र के प्रति भी राग उत्पन्न ना हो और शत्रु के प्रति द्वेष भी उत्पन्न ना हो, इस प्रकार के परिणामों को धारण करने का नाम समता है। इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करना, आर्त ध्यान होता है उससे। इतना सहज बनाओ अपने आप को कि मेरे लिए सब समान है, शत्रु भी समान और मित्र भी समान, समानता समता भाव आना चाहिए। इसी का नाम एकाग्रता, उसको करके देख लो, एकाग्र अपने आप होता है, इसी का नाम एकाग्रता है। शत्रु के प्रति द्वेष भाव भी नहीं और मित्र के प्रति राग भाव भी नहीं, तो बचा क्या? समता। समता में रहे आत्मा, और समता में रह करके चित्त किधर भी चली जाए घूमने के लिए, फिर वो सब ध्यान की कोटि में ही आता है। ध्यान का मतलब आप क्या समझते हैं? चित्त को सांकल से बांधना, जबरदस्त, जैसे हाथी को बांधा जाता है, और बैठ जाना, इसका नाम ध्यान है? गलत है। ये ध्यान की परिभाषा जो समझ अपनी है, ये बहुत भूल है। समता में यदि हैं तो चित्त को कहीं भी छोड़ो, राग द्वेष करेगा क्या? समता को चित्त धारण करके चला जाए, कहीं भी तीन लोक में भ्रमण करके आ जाए। केवली भगवान का चित्त तो सर्वत्र है, उनको सर्वगत कहा है, उनका नाम ही सर्वगत, उनका केवल ज्ञान सर्वगत रूप है। समता है क्या नहीं वहां? है। राग द्वेष होता है केवल ज्ञानी को? तो सब जगह जा रहा है उनका ज्ञान, क्या बिगड़ रहा है उनका? कर्म बंद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हमको किससे बचना है? कर्म बंद से बचना है ना। कर्म बंद से बचने का नाम ध्यान है। कर्म का आश्रय और बंद दोनों न हो, इसका नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान करने का अभ्यास करो। मन को चित्त को सांकल से बांधने का कोशिश कभी नहीं करो, टेंशन आ जाएगा, पागल बन जाएंगी। समता तो आई नहीं और चित्त को जबरदस्ती बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कई लोग ध्यान करने वाले पागल भी बने हैं, उनका चित्त विक्षिप्त हो गया। क्यों? जबरदस्ती जबरदस्ती चित्त को एक जगह एक जगह एक जगह रखने का प्रयत्न किया, टेंशन बढ़ गया और मेंदू पर असर आ गया, पागल बन गए, अस्पताल चले गए, एडमिट हो गए। ये ध्यान करने की तरीका नहीं है। ध्यान में आत्मा को कषाय मुक्त करना ये आवश्यक है। कषाय से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से समता की हानि होती है। और समता जो है हमको सरल बनाती है, सब ओर से फ्री, एकदम स्वस्थ बनाती है। स्वस्थ व्यक्ति का जो चित्त है वह सर्वव्याप्त रहता है, सर्वगत रहता है, पूरे तीन लोक में भ्रमण करता रहता है स्वस्थ चित्त, और धर्म ध्यान में तल्लीन रहता है। सामने बोर्ड लगा हुआ है ना, शायद पढ़ा नहीं। वही तो चल रहा है ना, आपको वो टेंशन क्यों आ रहा है? आप वास्तव में छोड़ना चाहते हैं क्या? टेंशन आ रहा है। हाँ होगा, कपड़ा है उसमें समता धारण करने का अभ्यास करना है। देखो हम जितना कहते हैं उतना कर लो, असंभव तो है। ये मैं भी कह रहा हूँ ना, क्या आता है ये कह रहा हूँ, और समता भाव को लाने का प्रयत्न करा रहा हूँ। नहीं, समता भाव तो वस्त्र अवस्था में आएगा ही नहीं, ये निश्चित है, लेकिन समता भाव का अभ्यास करना है। अभ्यास अभी करोगे मुनि बनने के बाद ऐसे बैठते ही ध्यान लग जाएगा, और ऐसे बैठते ही केवल ज्ञान हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने यही अभ्यास किया था गृहस्थ अवस्था में, और वो दीक्षा लिए, केश लॉन्च किए और पहले सामायिक में जब बैठ गए ना, केवल ज्ञान को लेकर के आ गए वो डूब कर। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, आहार तक नहीं उठे, एक भी आहार ग्रहण नहीं किया। पहली बार अभी दिगंबर दीक्षा लिए थे और पहली सामायिक कर रहे थे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। एक भी उपवास नहीं किया, एक बार आहार नहीं लिया। सरल है, सिर्फ कषायों को जीतना है। वस्त्र आदि पर पदार्थों के प्रति जो राग द्वेष हो रहा है, ये आदत पड़ गई है राग द्वेष करने की। इस आदत को छुड़ाना है, छोड़ने का प्रयत्न करना है। क्या? कैसा? समय को बांध कर, श्रावक सामयिक कर सकता है, सामायिक नहीं कर सकता। हमने कहा सामायिक तो मुनि ही कर सकता है, पर सामयिक तो कर सकता है श्रावक, कर सकता है। सामयिक का मतलब समय को बांध कर, सामायिक का मतलब समता को धारण कर, एक घंटे बैठ जाना। और समता तो यहां आती नहीं नीचे श्रावक अवस्था में, मुनि को या समता आती है। तो समता भाव धारण करके मुनि ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान सिद्धि होती है। श्रावक अवस्था में ध्यान है कहां? ध्यान का अभ्यास है। ये उपासना केंद्र जितने भी खुले हैं ना संसार में, ये काय के लिए? आपको एक शांति दिलाने के लिए। आपका मन जो ज्यादा चंचल चित्त वाला है उसको एक विराम स्वस्थता लाने के लिए, ध्यान सिद्धि के लिए नहीं। न ध्यान सिद्ध वहां हो सकता है, न समता की सिद्धि हो सकती है। ध्यान से पहले समता की सिद्धि होती है, फिर ध्यान की बात होती है। यह समता भाव निरंतर चलना चाहिए। यह सामायिक चारित्र है जो कि छठे गुणस्थान से लेकर नवे गुणस्थान तक चलता रहता है। इसको चारित्र कहा। चारित्र के बिना ध्यान की सिद्धि तो होती नहीं। और चारित्र किसका नाम? समता भाव। समता का नाम ही चारित्र है। ये चारित्र है। अब बात चलती है सामायिक आवश्यक क्रिया क्या है। मुनि सामायिक चारित्र को धारण करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से माध्यम हुआ 10 परिग्रह के संपूर्ण त्याग। समस्त 10 परिग्रहों का जीवन पर्यंत त्याग करने से अब चित्त कहाँ जाएगा? सामायिक चारित्र में आ जाएगा। आ तो गया, अब सामायिक आवश्यक क्रिया को पालन करो। ये कैसे करना? तो किसी के वशी में नहीं होना, पर के वश नहीं होना। पर क्या चीज है? चेतन और अचेतन पर है। चेतन और अचेतन पर है। पर के वशी नहीं होना या इंद्रिय विषय पर हैं, उन इंद्रिय विषयों से अपने मन को अपनी आत्मा को वशी नहीं करना, अवशी रहना। उनके वशी नहीं करना, अवशी रहना, ये आवश्यक क्रिया है। बैठ करके क्या करोगे? सामायिक चारित्र तो है पहले से, अब बैठ करके क्या करना है? किसी के वशी नहीं होना, इसका नाम सामायिक है। किसी के वशी वहां जाने की, यहां जाने की, कहीं आने की जाने की कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प होना। समता भाव सामायिक, तो सामायिक चारित्र की परिभाषा ये है। समता धारण करो, सामायिक चारित्र की सिद्धि होगी। अब सामायिक आवश्यक क्रिया क्या है? निर्विकल्प रहो। जब तक रहना है रहो, निर्विकल्प रहो। कितने समय तक? समय की पाबंदी यहां नहीं है। ध्यान कितने समय तक करें? ध्यान कितने समय तक करना चाहिए इसका कोई समय सीमा को खींचा नहीं गया। हाँ, ध्यान में रहो बस इतना ही। कब तक रहूं? तो वो भी एक तो विकल्प है। मैं अब यहां तक रहूं और बाद में ऊपर उठ करके आ जाऊं, ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं? ध्यान में ही रहो बस, जब तक तुम्हारे पास कैपेसिटी है डूबे रहो ध्यान में। तो कब तक रहूं? कब तक का सवाल नहीं, जब तक तुम रह सको तब तक समय को बांधो नहीं, बांध करके रहो नहीं। जब तक ध्यान लगा है लगने दो उसको, उसी ध्यान से तो केवल ज्ञान आने वाला है। ध्यान केवल ज्ञान को लेकर के आ जाता है ऊपर। ये लो केवल ज्ञान ला करके तुमको भेंट में दे रहा हूं। तो ध्यान कब तक करे ऐसा नहीं, देखो परचक्रवर्ती बैठ गए, अंतर्मुहूर्त में हुआ कि नहीं हुआ, वो अंतर्मुहूर्त कौन सा है, 48 मिनट का है ये लोगे, ऐसा लोगे 47 मिनट का लोगे, 30 मिनट का लोगे, कितने मिनट में उनको ध्यान हो गया, कब बैठे थे और कितने मिनट के भीतर हो गया, क्या उतने मिनट का संकल्प लेकर के गए थे क्या, इतने मिनट में मैं ले आऊंगा केवल ज्ञान को अंदर जाकर, नहीं। ध्यान करते समय समय का भी विकल्प नहीं रहता, निर्विकल्प रूप हो करके जाना अंदर। समुद्र में डूब रहे हैं तो डूबो, कितने समय के बाद हम बाहर आएंगे ये मत कहो किसी को, क्योंकि वो भी एक विकल्प होगा और जाते समय याद आएगा बार बार, मैं आधा घंटे के बाद ऊपर आऊंगा कहाँ है, तो जाना पड़ेगा मुझे, अब तो टाइम हो गया है। ऊपर वालों को कह करके आए हैं, जाना पड़ेगा। नहीं, खुद भी संकल्प हो करके नहीं जाना और किसी को संकल्प सुनाना भी नहीं कि इतने समय तक ध्यान करूंगा मत आना इधर। ध्यान करने का मेरा कोई सीमा नहीं, मैं निर्विकल्प होकर के समय की पाबंदी के बिना ध्यान करता हूं, भले ही 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 30 मिनट करो, चाहे 47 मिनट करो, 1 घंटे करो चाहे 12 घंटे करो, 1 साल करो चाहे 2 साल करो, पर निर्विकल्प होकर, निर्विकल्प होकर। और यदि वास्तव में निर्विकल्प ही होकर कर रहे हैं तो आपको अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा, केवल ज्ञान तो आ ही जाएगा। निर्विकल्प ध्यान केवल अंतर्मुहूर्त तक टिके, केवल ज्ञान हो ही जाता। अब कहीं भी कोई ये शर्त नहीं कि साधक उस दिन उपवास किया था क्या, नहीं साधक उस दिन और कुछ अच्छे अच्छे धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों को संपन्न किया था क्या, नहीं, कोई शर्त नहीं केवल ज्ञान के साथ, ऐसा कोई शर्त है? ऐसा शर्त होता तो बहुत आसान होता। ये नियम होता कि एक उपवास करना और 1 घंटा समय करना, नियम से केवल ज्ञान हो जाएगा तो सभी लोग कर लेते धड़ाधड़। तैयार हो जाते, लेकिन वैसा करने पर भी नहीं हो रहा है, ये समस्या है। वो साल भर तक खड़े रह करके भी देखा लेकिन नहीं हो पाए, ये समस्या है। बाहुबली भगवान को साल भर खड़े हुए क्यों नहीं हुआ? विकल्प। तो अपने को क्या छोड़ना है, मेन बात क्या है? विकल्प को छोड़ना है। ध्यान करने के लिए विकल्प बाधक है, निर्विकल्प हुए बिना ध्यान का दर्शन नहीं होता, ध्यान का दरवाजा खुलता ही नहीं। डोर ओपन होने के लिए निर्विकल्प पहला होना चाहिए, निर्विकल्पता की चाबी लगाओ, एकदम ओपन हो जाएगा, चले जाओ जब तक जाना हो अंदर, दौड़ लगाते रहो भीतर, आनंद ही आनंद है उस दरवाजा के अंदर जाओगे तो। और दौड़ते दौड़ते अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान का प्रकाश छा जाता है, अब ध्यान करने की जरूरत नहीं आपको, अब आप सर्वगत हो गए। ध्यान में भी सांकल से नहीं बांधा था, मन को, चित्त को, और केवल ज्ञान होने के बाद भी बांध नहीं सकते आप। केवल ज्ञान होने के बाद तो आपका, आपके भाव, आपकी आत्मा सर्वव्यापी हो जाएगी, पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगी। सारी दुनिया के पदार्थ आपके आत्मा में जैसे दर्पण में झलकते हैं, तीन लोक के पदार्थ आपके आत्मा में झलकेंगे। वह क्षायोपशमिक भाव भी हो सकता है, वह औपशमिक भाव भी हो सकता है, वह क्षायिक भाव भी हो सकता है। तीन प्रकार के भावों में से किसी को भी समझ ले सकते, अवस्था है। क्योंकि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी इन कर्मों का क्षोपशम होने के बाद क्षायोपशमिक चारित्र प्रकट हुआ, इससे छठा सप्तम गुणस्थान बन गया। यहाँ पर सविकल्प अवस्था में जब तक रहता है वह क्षायोपशमिक भाव सविकल्प कहलाता है, और यदि वह ध्यान में चले जाते हैं तो वही क्षायोपशमिक भाव निर्विकल्प हो जाता है, शुद्धोपयोग कहलाने लगता है। तो कर्मों का क्षायोपशम तो आवश्यक है ही। सर्वप्रथम अनंतानुबंधी का क्षोपशम हुए बिना किसी भी प्रकार से ध्यान सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उन कषायों का ये स्वभाव है, उन कषाय परिणामों का ये स्वभाव है कि वो शल्य सहित ही होते हैं, पर पदार्थों के रागादि भावों को छोड़ने नहीं देते। वो भाव जो जिस कषाय के उदय में हुए हैं, सर्वघाती कषाय के उदय में, वे सर्वघात करेंगे ही। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न भाव सर्वघाती भाव, किसके सर्वघाती भाव? चारित्र के सर्वघाती भाव। तो चारित्र को सर्वघात हम अपने भावों से ही कर रहे हैं, और उसमें अनंतानुबंधी कषाय कारण है, उसमें अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कारण है, उसमें प्रत्याख्यानावरणी कषाय कारण है। ये तीनों ही कषाय सर्वघाती हैं। सर्वघाती कषाय के उदय में सर्वघाती भाव ही होंगे, देशघाती भाव नहीं हो सकते। और इसलिए इनको क्षायोपशम रूप कन्वर्ट कर दो ये कह रहे हैं, यानी इनका उपशमन कर दो, तीनों का उपशमन और संज्वलन का उदय रखो। तो संज्वलन का उदय चारित्र का सर्वघाती नहीं है, देशघाती है, ये औदयिक भाव है। ये औदयिक भाव शुद्धोपयोग की, शुद्धोपयोग को साधने में बाधक नहीं है, इसके उदय में भी शुद्धोपयोग की अनुभूति होती है, इसके उदय में भी आत्मानुभूति होती है। तो ये औदयिक भाव बाधक नहीं। सर्वघाती कर्मों का उदय, जो उदय रूप जो औदयिक भाव है वो बाधक कारण है। तो उन औदयिक भावों का अभाव कर दो, यानी उपशमन कर दो, और देशघाती का उदय कर दो। संज्वलन देशघाती है, तो इसके उदय में और इसके उपशमन में जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, उन्हीं का नाम क्षायोपशमिक भाव। यह क्षायोपशमिक भाव शुभोपयोग के काल में सविकल्प होता है और शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प होता है, और यही निर्विकल्पता अंतर्मुहूर्त अगर टिकती है तो केवल ज्ञान को ले आता है। किंतु ध्यान रखे, क्षायोपशमिक चारित्र की अवस्था में जो शुद्धोपयोग होता है वो जगण्य होगा, वो केवल ज्ञान को ले आने में समर्थ नहीं रहेगा। यही कारण है कि वह उस क्षायोपशमिक चारित्र को उन्हें क्षायिक बनाना पड़ता है। क्षायोपशम चारित्र को जब तक क्षायिक चारित्र में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वह शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा जिसको कि हम उत्कृष्ट मानते हैं। जगन से लेकर शुद्धोपयोग उत्कृष्ट तक गया है, छठे सप्तम गुण, सप्तम गुणस्थान के प्रवृत्ति रहित सप्तम गुणस्थान से लेकर जगन से लेकर बारहवीं गुण स्थान तक उत्कृष्ट बनता है ना, वो केवल ज्ञान का कारण है। बारहवीं गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का कारण, यहाँ नीचे वाला नहीं। नीचे वाला तो क्षायोपशमिक चारित्र के साथ शुद्धोपयोग है और जघन्य है, ये जघन्य अवस्था है, इससे केवल ज्ञान होने वाला नहीं। भले ही अंतर्मूर्त तक शुद्धोपयोग टिका, शुद्ध परिणाम टिके, लेकिन केवल ज्ञान को पाने में समर्थ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर औदयिक भाव विद्यमान है। अभी संज्वलन कषाय को जीता नहीं, और संज्वलन कषाय को ही जीतने के लिए हमको इस क्षायोपशमिक चारित्र को क्षायिक बनाना पड़ता है। जब वह चारित्र क्षायिक बन जाए तो क्षायिक चारित्र जो औदयिक भाव वाला ये जो संज्वलन कषाय है, इस औदयिक भाव को भी वो क्षय करते, दसवें गुणस्थान में जाकर के दसवें गुणस्थान तक वह औदयिक भाव है, वहां पर उदय को हटा करके क्षय कर लेते। तो सभी सत्ता में रहने वाले जो चारित्र मोहिनी के कर्म हैं, संज्वलन सहित सभी, उन सब का क्षय होने पर, उन सब का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति अंतर्मुहूर्त में होती है। यह अंतर्मुहूर्त कहाँ का लेना, बारहवें गुणस्थान का जो अंतर्मुहूर्त काल है, वह काल शुद्धोपयोग का काल केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का साधक है और केवल ज्ञान साध्य है, यह कारण है और वह कार्य है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में व्यवस्था है। टाइम हो गया, सामायिक संबंधी बहुत सारी बातें आज सुनी, सुनाने के लिए तो बहुत है, कब तक सुना। लेकिन कुछ तो मिल गया। देखो, दृष्टि को निर्मल रखो, परमार्थ दृष्टि से ही चारित्र धारण करना, कोई भी ख्याति लाभ पूजा आदि के उद्देश्य से कोई काम करना नहीं, एक दिन भी नहीं करना। लालच बुरी चीज है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।